Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
परमात्मा जो है, परमात्मा जो उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उससे विपरीत का भोग नहीं कर सकते। इसलिए अगर परमात्मा ही उसका भोग नहीं कर सकते, तो परमात्मा को रिझाने के लिए हम क्या देते हैं भाई? हाँ, हमारा ही बनाया हुआ कुछ उसको दे देते हैं। भाई ये लो, भाई ये खाओ, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। हम क्या देंगे उसको? वो भोग कर सकेगा क्या? उसको भोग करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आनंद का ही भोगता है। तो हमें अगर परमात्मा को कुछ देना है तो क्या देना है पता है? परमात्मा को एक स्मृति रूप ही भेंट देनी है। कैसी स्मृति? कि जब मैं अपने मन को जो भा रहा है उसके साथ मैं जब इंद्रिय सन्निकर्ष कर रहा हूं, तो उसमें से जो आनंद उठा वो मैं तुझे दे देता हूं। आई गिव इट टू यू, ठीक है, वो मैं तुझे दे देता हूँ। बी थैंकफुल। एटलीस्ट इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बी थैंकफुल एट ईच एंड एवरी मोमेंट। जब भी आनंद हुआ, जब भी सन्निकर्ष हुआ, तो उसके पकड़ के उसे दे दीजिए। इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू गिव एनीथिंग टू योर लॉर्ड, बिकॉज वो वही खा सकता है, वो जो है वही उसको दे सकते हैं आप, तो वो ले लेगा। तो वो आपका आनंद क्या होगा? वो आपका आनंद रिजर्व हो जाएगा, वो शाश्वत हो जाएगा, वो बच जाएगा और आप तृप्त हो जाएंगे वो भोग से। अगर वो भोग के साथ आनंद आ गया और वो आनंद आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो वो भोग से आपको तृप्ति मिल जाएगी। फिर वो भोग आपको डरा भी नहीं सकता, दौड़ा भी नहीं सकता, परेशान भी नहीं कर सकता। भोग के बाद परेशानी शुरू होती है कि फिर से कब आए या ये फिर से कब न आए। ऐसी ही अवस्थाएं चलती रहती है। कुछ देना है तो जागृत का आनंद दे देना। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में जो आनंद है, परमात्मा को प्रार्थना करके सोते हैं कि स्वप्न अवस्था में जो जो भी मैं भोग करूं उसका आनंद मैं आपको समर्पित करते ही सो रहा हूं। तो वहां जितने भी आनंद होंगे वो भी परमात्मा को आपने गिफ्ट दे दी, समर्पित कर दिया। उसको आप देंगे तो ही पता लगेगा, तो ही एक होगा, क्योंकि वो आनंद का भोग करने के लिए उसे आना ही पड़ेगा। वो भोग करने वाला कहाँ है? भोग करने वाला परमात्मा कैसा है? सर्वदेशीय है, सर्वकाल में है, वो वहां है ही। ये मर्ज हो जाता है। ये क्या है कि हम हमारे घर से, हमारे घर की मटकी में से पानी लेके, एक गिलास पानी लेके समुद्र को देने जाते। अगर समुद्र को कुछ देना ही है तो उसमें कुछ घुल मिल जाए ऐसा ही दे सकते है ना। एक कटोरी भर के, एक बॉटल भर के ऑयल नहीं डाल सकते। वो मिलता नहीं है समुद्र को। समुद्र में क्या देना है? समुद्र में अगर देना ही है तो एक बूंद जल दे दीजिए तो हो जाएगा। तो ये आपका एक क्षण का आनंद वो परमात्मा को दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे? एक ग्लास पानी में समुद्र को देने जाती हूँ तो अब वो एक ग्लास पानी क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो ऐसे एक क्षण का भी आनंद उसे समर्पित कर दिया तो उसी क्षण जो आपको अनुभव होगा ना, वो विराट परमात्मा का अनुभव होगा। पर देना चाहिए, देने के लिए पहले जानना चाहिए कि वो आनंद है। जानने से पहले जब वो सन्निकर्ष होता है तब वो आनंद के लिए, आनंद की जो घटना घटती है उसमें सतर्कता आनी चाहिए। हम आनंद प्राप्त करने में इतने प्रचुर हो जाते हैं कि सतर्क नहीं रहते कि ये आनंद आया और ये उसे किसी को दे देना है। तो भाई देना है या नहीं? आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखती है और हम जाके दे दे उसको। आनंद को देना या नहीं? परमात्मा को बड़े से बड़ा कुछ देना या नहीं? क्या हमारी स्मृति जो है, हमारी जो सतर्कता है, हमारी जो रिमेम्बरेंस जो है, चेतना जो है, बस उसे याद ही करना है, वही उसे देना है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको मिलना नहीं होता पर याद आप आते हैं, हम आपको याद कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? काफी है भाई आपको, हमारा याद करना काफी है। भले बरसों तक हम नहीं मिल सकेंगे उसकी बात नहीं है, याद किया तो काफी हो गया। बस इसी प्रकार वो परमात्मा तो वहां है स्टेडीली, याद किया तो काफी हो गया। हमारी तरफ से जो कोई आत्म साक्षात्कार संबंधी पुरुषार्थ की बात करते हैं ना भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष और धर्म में पुरुषार्थ तो यही पुरुषार्थ है कि आप उसे सिर्फ याद कर लीजिए। और यह याद करने के लिए ही मंदिर है, मूर्ति है, तीर्थाटन है, भजन है, भक्ति है, सत्संग है, उसकी व्यवस्थाएं स्थूल रूपेण की गई है कि भाई ऐसे बंद आंख करके तो आप याद नहीं कर सकते। वो थोड़ा दूरदर्श है, कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, तो भाई बाहर के संपर्क से भी याद कर लीजिए। जब आप परमात्मा के साथ खड़े होते हैं, अपनी अच्छी मूर्ति जो लगती है उसके सामने आप खड़े होते हैं, तो क्या हो जाता है, एक क्षण के लिए आनंद आता है कि नहीं? हाँ, आनंद आ जाता है, जो उल्लास हो जाता है, जो आश्चर्य से भर जाते हैं ना, वही वो परमात्मा है आपके भीतर से। वो आनंद मूर्ति में से निकला? हाँ, कोई गुरुजनों को मिलने से जो आपको आनंद आता है वो कहां से निकला? उसके शरीर में से निकला? नहीं। देखो ऐसा ही होता तो घर में आके भी आप याद कर सकते हैं वही मूर्ति को, और वही आनंद आता है। आनंद का स्रोत कहां से झलकता है? तो बोले मेरे भीतर से ही उसका प्रगटीकरण हुआ। सिर्फ मूर्ति जो है, कोई भी प्रतिमा है, कोई भी स्मृति है, वो उसका सिर्फ मात्र अवलंबन है, वो खाली सहारा है। तो ये जो आनंद जो है, जो क्षण क्षण में आपको आश्चर्यचकित कर देता है, वही ये परमात्मा है। तो आनंद भूख याने बराबर आपको अब समझ में आया कि जब सन्निकर्ष होता है आनंद निकलता है। बस वो आनंद को ही याद कर लीजिए कि ये भोग है, वो नाशवंत है, भोगतने वाली ये इंद्रिया भी नाशवंत है, उसके बीच में जो हो रहा है वही वो परमात्मा है। और जिस क्षण बिना भोग, बिना इंद्रिय सन्निकर्ष आप वो आनंद को याद कर सके, तो समझना कि वो आनंद, बिना वो आनंद को भोग की आवश्यकता नहीं है, बिना भोग भी आप याद कर सकते हैं। भाई कैसे? तो अभी यहाँ बैठ के आपके कोई भी जो प्रिय चीज है उसे आप याद कीजिए मन से। प्रिय जो परमात्मा है उसे याद कीजिए, प्रिय व्यक्ति भी चलेगी, प्रिय वस्तु भी चलेगी, जो आपको बहुत बहुत प्रिय है। एक क्षण के लिए भी आप अपनी प्रिय चीज को याद करेंगे तो उसका तो अभी अभाव है, पर आनंद है कि नहीं आपके साथ? आनंद है कि नहीं? हाँ, आपने बोला आनंद है, तो आप मुझे बताइए कि आपके ये आनंद के लिए सहारा किसका लेना पड़ा? वो व्यक्ति का, इंद्रिय सन्निकर्ष का? आया कहाँ से ये आनंद? ये आनंद तो वहां था ही, ये आनंद तो वहां था ही। तो ये जितने जितने सन्निकर्ष होते हैं, जितने जितने विषयों के भोग होते हैं, वो परमात्मा वहीं से झलकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे हम आनंद से ही भरे हैं। ये सन्निकर्ष सिर्फ अवलंबन, सिर्फ एक निमित्त बनते हैं। और परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है। देखिए ये कृपा, ये आश्चर्य है कि वो परमात्मा स्थूल स्वरूप से पर है, फिर भी स्थूल स्वरूप से साथ जब सन्निकर्ष होता है तब वो आनंद उत्पन्न होता है। अब ये कैसे हो सकता है? अब थोड़ा आगे सोचिए। स्थूल है, इंद्रिया कैसी है? इंद्रिया जड़ है। और भोग का विषय क्या है? भोग का विषय भी जड़ है। तो ये जड़ जो है इंद्रिय, वो स्थूल भोग के साथ जब मिलती है तो आनंद क्यों उत्पन्न होता है? आनंद तो चेतन है, आनंद की आनंद रहता है, ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में सोचिए जरा। और यही इतना सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वत्र अदृश्य रूप से विलसित है। अब क्या होता है, सभी पदार्थ में अस्थिभाति प्रिय रूप से वो जो परमात्मा है मेरे भीतर, अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि सन्निकर्ष होता किसका है, मिलता कौन है, क्योंकि मिलने वाला चेतन ही होना चाहिए। ये जो भोग हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है, सानिध्य हो रहा है विषयों का इंद्रियों के साथ, उसमें कुछ तो कहीं चेतन होना ही चाहिए, नहीं तो आनंद की उत्पत्ति कैसे होगी? आनंद सिर्फ परमात्मा का ही स्वभाव है, जड़ इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, तो कहां से आएगा वो आनंद? हाँ, तो ये जो पदार्थ जो है, पदार्थ है वो भी आच्छादित है। वे किससे आच्छादित है? ये जो टेबल है वो किससे आच्छादित है? टेबल के ऊपर क्या है, ये जब टेबल, ये टेबल है ऐसा मैं बोलती हूँ तो सबसे पहले मैं किसको देखती हूँ? हाँ हाँ, कवर के पहले, हाँ क्या है कवर के पहले, इधर मैं अंधेरा कर दूं तो नजर किसके ऊपर पहले जाती है? पहले जो वेस्टर्न है, जो प्रकाश है, जो उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर नजर पहले जाती है। पर ये आवरण कैसा है? ये आवरण अदृश्य है, ये आवरण अनिर्देश्य है। ये आवरण कैसा है? उसका कोई आकार है? नहीं भाई, उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वदेशीय है, सर्वकाल में है। तो ये जो आवरण जो है, ये आत्मा का अस्थि भाति प्रिय रूप का आवरण है, वो सब पदार्थ में है। अब ज्ञान कैसे होता है? जड़ जड़ से जड़ का ज्ञान कर सकता है क्या? इंद्रिया जड़ है, वो ये जड़ टेबल का ज्ञान नहीं कर सकती है। तो ज्ञान कैसे होता है? भाई मेरे भीतर ये चक्षु इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय से मन, मन पहले मन होता है कि मैं ये इसको जानूं, पहले जानने की इच्छा होती है, फिर ही पदार्थ मुझे, मैं पदार्थ को जान सकती हूँ। बिना मन में पदार्थ को नहीं जान सकती। कई बार ऐसा होता है, जागृत अवस्था में हम बैठे हैं, पदार्थ सामने से निकल गया पर हमने नोटिस नहीं ली, उसका ज्ञान नहीं हुआ। ये तो हमारे अनुभव की बात है। तो जब मन होता है, मन क्या होता है? मन मीडिया होता है। मन को, मन भी जड़ है, मन को सत्ता और स्फूर्ति कौन देता है यहां से वहां तक जाने के लिए? वो चेतन है। तो मन के भीतर भी स्वयं प्रकाशित्व चेतन आ गया, इंद्रिय में भी सत्ता और स्फूर्ति रूप चेतन आ गया, आंख अब तैयार है कि दृष्टा दृश्य को देखने के लिए, आंख अब तैयार है। ये दृक, ये रूप है, ये दृश्य है, और आंख के भीतर जो मन है, वो मन अब निकल के अंतकरण की वृत्ति, जो मन है वो अंतकरण की वृत्ति अब टेबल के आकार की होने लगी। तो यहाँ जब टेबल का आकार मन की वृत्ति लेती है, तो मन तो ठोस नहीं है, मन भी अदृश्य है, और अदृश्य ही अदृश्य को मिल सकता है। इसके ऊपर अदृश्य आत्मा परमात्मा का वेस्टर्न जो है, वो मन अगर अदृश्य है उसे ही मिल सकता है। उसका जो, जिसका स्वभाव है आत्मा का, वही स्वभाव मेरे मन का हुआ तो ही एकीकरण हो सकता है। यानी वो जो परमात्मा सूक्ष्म अदृश्य बाहर है, वही क्वालिटी मेरे भीतर है, जो यहाँ वृत्ति बन के बाहर आती है। टेबल के जो टेबला, टेबल के ऊपर अंदर जो चेतन है, टेबल के अंदर अवच्छिन्न चैतन्य जो है, वो मेरे भीतर अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उसके साथ एक होता है। तब मिलता है ज्ञान का होता है कि ये टेबल है। स्थूल स्थूल का ज्ञान नहीं कर सकता। बाहर अगर चेतन है और भीतर चेतन है, दोनों जगह चेतन है, तो ही ज्ञान हो सकता है। यानी मेरे बाहर और मेरे भीतर सबाह्य अभ्यंतर ही अजह, परमात्मा इज इन एंड थ्रू, बाहर भी है, इन एंड थ्रू, इसके कॉन्टेक्ट में भी है और अंदर भी है, सभी जगह वही परमात्मा का वेस्टर्न, वही परमात्मा की ज्ञप्ति जो है वो चल रहा है। इतना, ये तीन अवस्था को जान के परमात्मा का जो ठोस ज्ञान स्वरूप है, सिर्फ चेतन स्वरूप है, वो चेतन तक हमें ये उपनिषद की तीसरी जो अवस्था है वो ले आती है। ये आनंद बुक अब कहा है कि ये चेतोमुख है। आनंद बुक तो है पर ये चेतोमुख है। चेतोमुख यानी क्या? कि मुख यानी किसी का द्वार ये बनता है। भाई किसका ये द्वार बनता है? तो देखिए, अंधेरे में हम बैठे हैं, ये हाथ पैर ये सब क्या है? ये सब एकीभूत घनीभूत हो गए हैं। अब ये जो अंधेरे की जो घन अवस्था है, जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? यही अवस्था में से ये सब नाना रूप जो है, जो विभाग है, वो फिर से उसका जन्म होगा। इसी प्रकार ये सुषुप्ति अवस्था को चेतोमुख क्यों कहा है? चेतो यानि चेतना का अनुभव जो अवस्था में होता है, जहाँ आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करने वाला जहाँ होता है, वैसी अवस्था। तो जागृत अवस्था में मैं कहते हैं कि मैंने ये सब अनुभव किया, तो सुषुप्ति से उपनिषद में कहा है कि जागृत में भी आदमी जा सकता है और सुषुप्ति में से स्वप्न में भी जा सकता है। इसीलिए चेतो मुख कहा, चेतो यानी चेतना से जो जो भी कर्म हो सकते हैं वो ये सुषुप्ति अवस्था उसका जाने की द्वार बनती है, इसलिए चेतो मुख कहा। चेतो मुख क्यों कहा, जन्म का द्वार क्यों कहा, क्योंकि यही ये सुषुप्ति अवस्था है जहाँ जागृत के सब स्थूल पदार्थ एक हो गए हैं, जाने की जागृत अवस्था में वो जन्म फिर से लेते हैं, इसीलिए उसका वो मुख बनता है। सूक्ष्म जो स्वप्न अवस्था के जो सूक्ष्म भोग है उसके भी संस्कार सुषुप्ति में घनीभूत हो जाते हैं, प्रज्ञान घन एकीभूत हो गए, जाने की स्वप्न अवस्था में फिर से दिख रहे हैं। यानी ये सुषुप्ति अवस्था ऐसी है कि स्वप्न देखना चाहता है वो अंदर का परमात्मा, तो स्वप्न अवस्था फिर से शुरू हो जाती है। कई बार डीप स्लीप हो जाने के बाद भी आपका अनुभव है कि सुबह आप उठने से पहले स्वप्न देख लेते हैं फिर से, और फिर वही स्वप्न से आप जाग जाते हैं, या फिर एकदम गाढ़ निद्रा है और तुरंत आप एकदम ही जाग जाते हैं। तो ये चेतो मुख है, इसे प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ यानी यही जानने वाला। यहाँ प्राज्ञ यानी किसको जानता है ये, तो बोले सुषुप्ति के स्थूल पदार्थ के अभाव को जानने वाला, सूक्ष्म पदार्थ के अभाव को जानने वाला। स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ के सन्निकर्ष से जो भी कुछ आनंद होता है उसे वो अभाव को जानने वाला, अभाव को जानने वाला यानी प्राज्ञ। इसलिए कहा है अभाव को क्यों जानता है, यहाँ वैश्वानर विश्व की बात नहीं की, यहाँ तेजस प्रकाशत्व की जरूर नहीं है, यहाँ अभाव को जानने वाला है। इसीलिए अग्नि यानी वो जो अभावात्मक जो परमात्मा, ज्ञान यहाँ कैसा है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में ज्ञान अभावात्मक है। सुबह उठ के हम बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानने जैसा जिसका ज्ञान है उसे प्राज्ञ कहते हैं, यानी ज्ञान के अभाव को भी जो जान रहा है। पहले भी आपको बता दिया कि ज्ञान का भाव और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ज्ञान का अभाव भी आप अगर जानते हैं, आप कहते हैं कि मैं अभाव को भी जानता हूँ, तो ज्ञान के भाव और अभाव को जानने वाले आप उससे कोई तीसरे हैं, आप उससे कोई पर हैं। तो ये ज्ञान के अभाव को, अभी सुषुप्ति के अभाव को आपने जाना कि नहीं, हाँ सुषुप्ति के अभाव को आपने जान लिया कि कोई सुषुप्ति में था जो कुछ भी नहीं भोग कर रहा था, सुबह उठ के मैंने उसको जाना। तो आपके भीतर जो अभाव को जानने वाला है वो ये तुरीय है, जो खुद अभावात्मक नहीं है। फिर से मैं कहती हूँ, अभाव को अगर आप जानते हैं तो आपका स्वभाव कैसा हो गया, अभाव अभाव को नहीं जान सकता। अभाव को आपने कैसे जाना, वहां कोई होगा, किसी की तो प्रेजेंस होगी जो अभाव के स्वभाव से विपरीत होगी। सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, फिर से कहती हूँ, सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ ऐसा उधर जानने वाला, एब्सेंस ऑफ आनंद की नोट लेने वाला तो कोई होगा ना, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वभाव भाव स्वरूप ही होगा। पर उसका भाव कैसा है, कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, निराकार है। तो ये सब किसके लक्षण हो गए भाई, कोई और परमात्मा की बात करते हैं क्या, हाँ यही ये ब्रह्म के सब स्वरूप लक्षण हो गए। तो अब और क्या चाहिए, अगर आप जान सकते हैं कि मैं अभाव को जानने वाला हूँ, तो वही वो आपका स्वभाव है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही वो आप परमात्मा है। ये तीन अवस्थाओं में से ये जो परमात्मा तीनों अवस्था में जो झृंबण कर रहा है वो परमात्मा को जानने की ये सब चेष्टा है। शांति से आप आंख बंद कर दीजिए, मैं शांति पाठ जब करूंगी और आंखें खोलने को बोलूंगी तब आप आंख खोल सकते हैं, और शांति से कोई भी प्रकार की बातचीत किए बिना आप अपने कार्य में लग सकते हैं। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें शांति से बंद कर दीजिए। पहले दिन जब हमें ये प्रयोग किया था तब सिर्फ ओमकार का जो नाद था उसके ऊपर ध्यान दिया था, बाद में ओमकार के भाव और ओमकार के नाद के बाद जो अशब्द अवस्था है उसके ऊपर हमने ध्यान दिया था, और अब मेरे जो ध्यान के विषय है वो जब उच्चारण होगा तब मेरा ध्यान होगा, वही ध्यान देने की जो भीतर ज्ञप्ति है, जो चेतना है, जो चेतना के जरिए, जो चित्त से चित्त के जरिए मैंने शब्द के ऊपर ध्यान दिया, वही आपको ख्याल रखना है कि ध्यान देने की जो वृत्ति है, जो ज्ञप्ति है, वो वही ज्ञप्ति अशब्द को भी जान सकती है, और यही ज्ञप्ति शब्द और अशब्द को मैं जान रही हूँ ऐसा जान रही है। ये सिर्फ जो जानना हुआ, ये जो भाव हुआ, वही ये प्रज्ञान घन, यही है विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप, यही ये भाव और अभाव को जानने वाला परमात्मा। ओंकार के अवलंबन से मैं उच्चारण करूंगी, बाद आप उच्चारण करेंगे, ध्यान किसके ऊपर देना है उसकी बात आपको बताई दी गई है। अकार उकार मकार ओंकार की जो तीन मात्राएं हैं, समष्टि वैश्वानर हिरण्यगर्भ और ईश्वर, वही व्यष्टि रूप से ये तीन अवस्थाओं के रूप है, वही रूप का और संक्षिप्तकरण करने के बाद पूरी जागृत अवस्था अ है, स्वप्नावस्था उ है, सुषुप्ति अवस्था म है, इससे जो उच्चारण बना ये ओमकार के उच्चारण के बाद जो शांत अशब्द अनुच्चारण जो अवस्था है वही चौथी तुरीय अवस्था है। ये उच्चारण के बाद आया हुआ जो शांत मन है वही तुरीय परमात्मा है। आपका जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो यही है। यहाँ कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। ये शांति को जानने के लिए मुझे कोई भी करण की आवश्यकता या जरूर नहीं है। कोई इंद्रिय सन्निकर्ष यहाँ नहीं हो रहा, मन का कोई भी विचार यहाँ अपेक्षित नहीं है। मेरी बुद्धि है पर निर्णय नहीं ले रही है। अहंकार है पर अहंकार कोई भी विषय पे कर्ता भोक्ता भाव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई विषय नहीं है, फिर भी मैं हूँ। यही आपका शांत स्वरूप है जो आपके भीतर ही है। जागृत में जो भी भोग आप कर रहे हैं, स्वप्न में जो भी भोग कर रहे हैं, मात्र ओमकार का उच्चारण किया वो सब भोग हो जाते हैं। जब भी कोई भी भोग का विचार आए, सिर्फ ओमकार का जप करके उसके बाद जो अशब्द अवस्था है उसी का सिर्फ चिंतन करेंगे, कोई भी भोग आपको आसक्त नहीं कर सकेगा। ये जो शांत अवस्था है, सिर्फ यही मेरा स्वभाव है, उसके ऊपर ज्यादा विचार भी नहीं करना है। यही स्थिति है, यही तुरीय अवस्था है, यही कुछ चौथी अवस्था है। अब तक आपने जागृत अवस्था का अनुभव खूब किया है, स्वप्न भी देखे हैं, सुषुप्ति भी है। ये जो उच्चारण के बाद की अवस्था है, यहाँ आप जाग तो रहे हैं फिर भी भोग नहीं है, आंखें बंद भी है तो भी स्वप्न नहीं है, कोई भी सन्निकर्ष सूक्ष्म और स्थूल नहीं है तो भी ये सुषुप्ति नहीं है। ये तीनों अवस्था से पर कुछ है, यही तुरीय है, यही चौथी अवस्था है। इसी में परमात्मा हमारी मति को स्थिर रखे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णे विश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैः तुष्टुवाघुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, हाथ छोड़ दीजिए।